نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دسواں پارہ سورة الأنفال آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واعلموا أنما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے ملنے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی, تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے جو دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے یعنی ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے, لیکن جو کچھ پیش آیا وہ صرف اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے غزوہ بدر کی بات ہے. ہم ایک سوال کا جواب سن رہے ہیں جو سورت کے آغاز میں تھا. تھوڑی سی بات کروں گی غزوہ بدر پر اور اس کے سنیریو پر, اور اسی کے ناطے سے پھر سورت الانفال کو ہم اور اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ. سورت آل عمران میں غزوہ احد کی شکست کی بات تھی, تو سورت الانفال میں غزوہ بدر کی فتح کو کیسے سنبھالو اس موضوع پر بات ہے. یاد رکھیے کہ انسان بڑے شوق سے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دو چیزوں کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے. ایک کیا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے, اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا, ہم تو کبھی کریں گے نہیں, اچھا بھلا کام کیا فائلیں ڈیلیٹ ہو گئیں. آپ کہتے ہیں آج کے بعد کام نہیں کریں گے, اخلاص نہیں تھا نا تو ساری فائلیں ڈیلیٹ ہو گئیں, ویب سائٹ ڈوب گئی, آپ نے جو کام کیا بھگدڑ مچ گئی. بس اس وقت شیطان ایک دل میں خیال ڈالتا ہے, کہتا ہے دیکھو تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی, تو لوگ پھر اس وقت میں ہمت توڑ کر پیچھے ہونے لگتے ہیں. ایک دوسری وجہ ہوتی ہے دین کے کاموں سے رکنے کی, اور وہ کیا ہے کہ جب کامیابی ہوتی ہے تو لوگ اپنی کامیابی سے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. غزوہ بدر کی کامیابی ایسی خوبصورت کامیابی تھی کہ جس کے بعد اگر واقعی صحابہ کرام کی تربیت نہ کی ہوتی, تزکیہ نہ ہوتا, 13 سال تک انہوں نے اللہ کے نام پر خوب ٹھوک بجا کر اپنے آپ کو یہ ثابت نہ کروا دیا ہوتا, یعنی 13 سال تک صحابہ کرام کا کردار اس طرح سے مضبوط اینٹوں کی طرح باندھا گیا, اللہ کے نبی نے ہر ہر پہلو سے ان کی تربیت کی کہ بعد میں فتح ہو یا شکست ان کو پتہ نہ چلے, اور ایسے بے لوس صحابہ تیار ہو گئے کہ جنہوں نے واقعی اپنے آپ کو پھر ہر محاذ پہ کامیاب کروا لیا. جب سوال پیدا ہوا کہ اس مال غنیمت کا جو دشمن سے حاصل ہوا کیا کیا جائے, تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو چند اخلاقی قسم کی باتیں سکھائی گئیں کہ دیکھو تم اس وقت ان سوالوں میں نہ پڑو کہ کیا کرے کیا نہ کرے، بلکہ تم اس وقت صبر کرو، تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو، تمہارے اندر کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ایک بات میرے آپ کے لیے بہت خوبصورت ہے کہ اگر آج میں نے آپ نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ امت مسلمہ دنیا میں پھر پنپے اور دنیا میں واقعی مسلمانوں کے لیے حقیقت میں ایسا مقام ہو جو صحابہ کو مل چکا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی امت کی تربیت کرنی پڑے گی، کریکٹر بلڈنگ کرنی پڑے گی، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں پورے یقین اور شرح صدر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج کے دور میں جو لوگ اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کر رہے ہیں وہ آج کے دور کے مجاہد ہیں۔ جب تک لوگ تیار نہ ہوں چینج نہیں آتا۔ کیا کہا؟ اصلحوا ذات بینکم، تم اپنی اصلاح کرو، تمہارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں۔ اللہ نے تمہیں اگر فتح دی ہے تو آپس کی محبت کی وجہ سے دی، اب ایسا نہ ہو کہ اختلافات میں پڑ کر اس جنگ کو ہال جاؤ۔ جب ہم کسی چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں نا تو پھر جھگڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین کا کام ہو تو اس کو اگر آپ تکبر اور کبر کے ساتھ لیں گے تو یہی معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 آیتیں سنانے کے بعد، جس کے اندر آپ نے پچھلے پارے کے اینڈ پہ دیکھا کہ کتنے خوبصورت طریقے سے کریکٹر بلڈنگ کی بھی تھی، صحابہ کو صبر کی بات سکھا دی کہ دیکھو تم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، سیلف لیس ہو کر کام کرو، یہ نہ سوچو کہ میری تعریف ہوئی کہ نہیں، اچھا میرے ساتھ تو کوئی انصاف نہیں کرتا، میں نے اتنے دل سے کام کیا، کسی نے ایک ایڈمٹ نہیں کیا، ایک دفعہ کچھ نہیں کہا۔ ان سب باتوں سے چھوڑو، اور اب اس کے بعد وعلمو، اب علم حاصل کرو، اب اس بات کو جان لو۔ کیا جان لو؟ کہ جو مال ملا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں مال کی بانٹ بڑے خوبصورت طریقے سے بتائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ یہ سوشل ورک پہ چلے گا۔ کوئی بھی دنیا کی اسٹیٹ دیکھیے جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، تو اس کے اندر حکومت لوگوں پہ خرچ کرتی ہے، جس کو یہاں اب کسی اور نام سے جانتے ہوں گے، یو کے میں کوئی اور نام ہوگا، لیکن اچھے ملک جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اسلام میں ٹیکسز نہیں ہوتے، جب بھی کوئی مسلم حکومت ہوگی اس میں ٹیکسز نہیں ہوں گے، تو لہٰذا یہ جو جنگوں میں ملنے والا سامان اور اسی طرح سے جو باقی آمدنی ہوتی ہے، اس کو پھر وقت کے حکمران یا لیڈر جو ہیں وہ اللہ کے خوف کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے مجھے آپ کو، اور وہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی نہیں باتوں کا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مال کی صحیح بانٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوئی بات ملتی تھی تو اس پہ کان رکھ کر سنتے تھے، پھر سننے کے بعد مانتے تھے، اور ماننے کے بعد اس بات کو بھول جاتے تھے، کیا ہوا کیسے ہوا۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کا جو گروہ تیار ہوا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنی ذات پہ رکھا، پھر اپنے گھر والوں پر لاگو کیا، پھر کہیں باہر نکلے۔ ہمارا معاملہ بعض دفعہ الٹ ہوتا ہے، ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اپنے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کی میری اپنی ذات پر اسلام نہیں آئے گا، تب تک نہ تو ہمیں مالی معاملات سمجھ آئیں گے، نہ ہمیں اللہ کے دین کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہمیں مل گئی، اور وہ کیا ہے کہ جب تمہارے اوپر آج بھی ایسے حالات پیدا ہوں گے، آج بھی جب مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی جنگ جاری ہوگی، تو اس کو جیتنے کے بھی یہی طریقے ہوں گے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور آج کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی وہ تو ایک اور دور تھا، وہ تو نبی تھے۔ لیکن یاد رکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول ہر معاملے میں اسوہ حسنہ ہے، قیامت تک کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ اس لیے اب اگلی آیتوں میں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا۔ ہاں، اس میں ایک چیز پہ غور کیجیے کہ یہ کیا بات تھی کہ جس کو جینا ہے وہ دلیل کے ساتھ جیے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، یہ دلیل کا دین ہے۔ آنکھیں بند کر کے زندگی کا سفر طے نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بے سوچے سمجھے فالو مت کیجیے، معاشرے کے ٹرینڈز پر مت چلیے، خوب جم کر کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جس چیز کی دلیل دے دے، جس پہ آپ کو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ غزوہ بدر کوئی پلان جنگ نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمان نہیں تھا، صحابہ کے تو وہم میں بھی نہیں یہ بات ہوگی، بالکل اچانک ہوئی اور فوراً ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے ہوں یا دنیا کے، کچھ کام پلاننگ کے بغیر ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹو مچ پلاننگ بھی بعض دفعہ چیزوں کو ڈیلے کر دیتی ہے، اس سے اجازت لو، اس سے کرو، یہ کرو، ابھی وہ کوئی نہیں، تو ایکسیلنسی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کبھی گھر میں 10 مہمان آ جائیں، آپ ایک گھنٹے میں پورا کھانا بنا لیتے ہیں، اور کبھی ایک ہفتہ پہلے سے غم پڑا ہوتا ہے، ہائے 10 مہمان آنے ہیں، لیکن کھانے کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں کھپا دیں۔ जिसको इस बात का यकीन आ गया ना, उसके लिए जिंदगी का कोई मोड़ मुश्किल नहीं रहेगा। हमें यकीन ही नहीं हम किस कॉज से लड़ रहे हैं। आप बताइए, क्या उस खिलाड़ी को कोई जितवा सकता है जो घर से ये सोच के गया कि मैं तो हारूंगा ही? और क्या वो फौजी किसी भी जगह मैदान मार कर आएगा जिसको यकीन ही ना हो कि मैं जीतूंगा? बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि दुनिया में जीने वाले दो तरह के होते हैं, जो एक अपनी ज़ात के लिए जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं, वो तो लगे हुए अपनी दुनिया के जिहाद को, जिसको आप कह सकते हैं कि वो फिर मकसद है उनका दुनिया कमाना। अल्लाह ताला कहते हैं खूब कमाओ, फिर खूब दिल खोल के कमाओ, फिर भागो दौड़ो। और बाकी आप देखते हैं कि लोग थक जाते हैं वीकेंड वीकडे, सुबह शाम रात दिन, इसको ओके करने दीजिए, वो भी मुजाहिद हैं, उनका हदफ जो है वो हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मेरा मकसद अल्लाह के दीन की खिदमत है, पहले तो खुद को पूछिए। आप तो यहाँ सुनने आए हैं ना, आपके साथ बहुत सारे साथी हेल्प भी करते हैं, हर एक मेरे समेत बैठकर खुद से पूछे, क्या मुझे इस मकसद का यकीन है जिसमें मैं लगी हूँ? क्या मेरा रास्ता वाकई यही है? क्योंकि देखिए, आज के दौर में मैं और आप तलवारें नहीं उठाएंगे, आज के दौर में तरबियत का मरहला, ये भी जिहाद है। अगर मेरी आपकी कोशिशों से लोगों की तरबियत हो जाए, तस्किया हो जाए और हम इस दुनिया से चले जाए, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हज़रत हमजा और हज़रत मुसब की तरह हमने फतह मक्का अगर ना भी देखी, हमने तबूक और हुनैन की फतुहात ना भी देखी, लेकिन अल्लाह के यहाँ हमारा हिस्सा होगा। तो माएँ इस सोच के साथ अपने बच्चों को पालें, उनकी अच्छी तरबियत करें कि कल अल्लाह के दीन को अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे बच्चे वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन इसके अंदर कभी कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो, इसके अंदर कभी ढीली मिली कोशिशें ना करें। आप ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, अच्छा देखेंगे जो होगा, नहीं, प्लानिंग करें। दुनिया में आप देखें छोटे छोटे कामों की लोग एक प्लानिंग्स करते हैं, तो क्या मैं और आप दीन की प्लानिंग नहीं करेंगे? अब इसके बाद आप देखिएगा कि मैदान जंग की कुछ झलकियाँ हैं, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने वो मंज़र आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस जुरी का हुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला, और याद करो वो वक्त जबकि अल्लाह ताला उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रखा था। अगर कहीं वो तुम्हें इनकी तादाद ज़्यादा दिखा देता तो तुम लोग ज़रूर हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने तुमको इससे बचा लिया। यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। ये हेड काउंट भी एक अजीब सा इशू है, कुछ लोगों की आदत ही सिर्फ लोगों को गिनना होता है, कितने आए कहाँ आए। तो ये आयत मुझे आपको सिखा रही है कि तादाद की कसरत तुम्हें किसी खुशफहमी में ना डाल दे। कोई पाँच है तो क्या हुआ, वो 5-50 का काम कर जाएंगे। और आज आप देखिए 1 बिलियन से ज़ायद मुसलमान है, लेकिन 313 के मुकाबले में इनका ईमान कम लगता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ दो। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की फ़ौज की असल दिखा दी, हैं वो 1,000 लेकिन रत्ती बराबर है। हदीस में आता है कल क़यामत के दिन किसी काफिर का एक वज़न एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा इस तरह लीडर्स को वो चीज़ें दिखा देता है जो आम लोगों को नज़र ही नहीं आ रही होती। नतीजा क्या हुआ कि हिम्मत जो थी वो बढ़ने लगी, और इस चीज़ को लेकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमे रहे और सहाबा कराम भी आपके साथ जमे रहे। और हकीकत यह है कि एक मोमिन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल कि मैंने हर मौके पे हर लम्हे अपने रब को राज़ी करना, उसको पैशन होता है, वो तड़पता है। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं याद करो वो वक्त जबकि मुकाबले के वक्त अल्लाह ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और इनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी इसे अल्लाह ज़हूर में ले आए। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ सारे मामलात रुजू करते हैं। क्या बता दिया इसमें कि कमी या कसरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मदद अल्लाह की तरफ से आती है। तुम ज़रा अपने आप को चेक करो। अब इस आयत का नाम मैं अक्सर कहती हूँ थिंग्स टू डू, या चेकलिस्ट है आपके मेरे लिए जब दीन के किसी काम के लिए निकले। चाहे सहाबा कराम को मैदान जंग में निकलना था और आपको मुझे इल्मी मैदान में निकलना है, तो मेरे आपके लिए यानी जो चीज़ें एटलीस्ट मुझे आपने अंदर और आपको अपने अंदर लानी है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वस्कुरुल्लाहा कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान लाने वालों, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो, तवक्को है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा नहीं करो, वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बस इनको हाईलाइट कर लीजिए, ये है ज़िंदगी के हर मैदान में हर जिहाद में कामयाबी का राज, कि तुम साबित कदम रहो। देखिए, आधी कोशिशें और अधूरे दिल के साथ तो खाना भी नहीं पकता। वो हंडिया चढ़ाए फिर उतारे, चढ़ाए फिर उतारे, चलो करूँ ना करूँ, नहीं पकेगा खाना। दीन का काम, अल्लाह के रास्ते का काम, जब तक आप साबित कदम नहीं रहेंगे वो नहीं होगा। आप कहते हैं सवाब ही तो लेना है। मिसाल देती हूँ मैं आपको, मैं अपने पे लेती हूँ, मुझे किसी पे लेने का तो हक नहीं है। आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि मैं आपको ये कुरान की आयात सिखाऊँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए आपकी उम्मीदों के मुताबिक इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। मैं सोचूं कि यहाँ आके बैठने में, सेटल डाउन होने में 3 घंटे, आने और जाने में 1 घंटा, तैयारी में 1 घंटा, ये तो सूर्य 6 घंटे हो गए। मैंने 6 घंटे लगा दिए और आपको उसमें 2-2.5 घंटे का एक पारा कराया, ये तो 4.5 या 3 घंटे या 3.5 घंटे ज़ाया हो गए। जी ठीक है, आप आके बैठे रहे, मैं घर बैठ के 6 घंटे तस्बीह लेकर, मेरा ख्याल है कि मैं कोई 1,000 से ज़्यादा दफ़ा तो आयत करीमा भी पढ़ लूँगी और हो सकता है कि मैं 6 सपारे भी पढ़ लूँ। लेकिन याद रखिएगा, जब लोगों को आपकी ज़रूरत हो तो उस वक्त आपकी ज़ाती इबादत जुर्म बन जाती हैं। याद रखिए, आज ये जुर्म बहुत सारे लोग मुसलमानों में करें। मैं आप यहाँ सब बैठे हैं और हम यहाँ आने वालों की उम्मीदों पे पूरे ना उतरें और सिर्फ अपनी किसी ज़ाती इबादत या ज़ाती मजबूरी का नाम लेकर घर बैठे रहते, ये दीन के ख़िलाफ़ है। इमाम काबा काबा में ना आए और घर बैठकर वो चिल्ला कशी भी कर लें, वो कुछ भी कर लें, वो उनके पाँव सूज जाए इबादत करते हुए, लेकिन इस वक्त उनको हरम में होना चाहिए था। तो जब इंसान इज्तमाई कामों के काबिल हो जाए ना, तो उसकी इनफरादी इबादत की फिर वो अहमियत नहीं रहती। ये इनफरादी इबादत करते क्यों हो अल्लाह के बंदो, कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते में भागना आए? ये जो नमाज से ताकत और एनर्जी मिलती है ना, ये अल्लाह के रास्तों में भागने में मददगार करती है। असल हदफ ये है कि हम अल्लाह के दीन को सर्व करें। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको बना बनाया एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वरना तो हर बंदे के बस में कहाँ है कि वो ऐसी कोशिशें करे और ऐसे मराहिल तय करे जिसके बाद फिर इंसान दुनिया को सर्व करे। तो जिस बंदे को दीन के किसी काम में हिस्सा डालने का मौका मिल जाए, उसको फ़राइज़ के बाद बाकी औकात में जिस तरह भी अपने आप को सेटल डाउन कर सके, उसका जिहाद क्या है कि उसने अल्लाह के दीन को सर्व करना है। मैंने 20ों बार मैंने सीरत पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और 10ों बार तो पढ़ाई भी है, ये भी मैं यकीन से कह सकती हूँ। छोटी बड़ी सीरीज़, मुझे सहाबा का जो एक किरदार और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिला ना, इनकलाब, हरकत, डायनेमिक थे और उनके अंदर एक हलचल थी, इनकलाब था। वो क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि जिस वक्त काम करने का वक्त हो, अगर उस वक्त आप वाकई कोई और काम करेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा फसबतू क्या है? जम जाओ, साबित कदम हो। फिर देखिए, वज़कुरुल्लाह कसीरा, क्या हमारी ज़ुबान हर वक्त बिजी होती है? आप मुझे बता सकते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी को राइट दे रहे हैं ना दीन की जगह पे लाने के लिए, क्या आपकी ज़ुबान खाली थी कि फारिग थी? कितने लोग हैं जो घर से आने तक यहाँ तक जिक्र करते रहे, तिलावत कर ली, सुबह शाम की दुआएं कर ली, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्यों नहीं पढ़ते हम? आप सब अपने ऊपर फ़र्ज़ करें। मैं और अपनी सारी टीम को, वर्ल्ड वाइड जो जहाँ बैठे सुन रहे हैं इस वक्त, सबको एक नसीहत करूँगी कि अपनी ज़ुबानों को जिक्र में तर रखा करें। शिकवे नहीं आएंगे, गिले नहीं आएंगे, बहुत बोलेंगे नहीं, बहुत बातें नहीं करेंगे, लोग आपसे खुश रहेंगे। मैंने देखा है कि आपस की ये अगली बात आ रही है ना, कि तुम आपस में वला तनाज़ व तफ़श्शलू, कि तनाज़े और आपस में जो दिल खट्टे होते हैं ना, उसकी वजह हमारा बोलना होता है। आप ज़ुबान को जिक्र से तर रखें। चलिए 1 महीने की एक्टिविटी करते हैं, मैंने हर वक्त जिक्र में अपनी ज़ुबान को तर रखना है। अब इसके लिए कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है कि आप बैठे और तस्बीह लेकर बैठे और पानी सामने रख कर ख़ुद को मछली के पेट में सोच के आयत करीमा पढ़े, नहीं। इसके लिए आप, मैं हर वक्त खाना पका रहे हैं, बच्चों को सर्व कर रहे हैं, जिस वक्त याद है, अच्छा इसके लिए कोई काउंटिंग भी ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए, कभी कोई गुनाह याद आ गया अस्तग़फिरुल्लाह, कोई अल्लाह की नेमत याद आई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ अल्लाह की कुदरत की आपको कुदरत पे गौर किया सुभान अल्लाह, और वल्ला ही ये आपकी डिक्शनरी बन जाएगी कि आप अपनी रात की करवटों में गिन सकते हैं कि आप कितनी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, कितनी दफ़ा सुभान अल्लाह कहते हैं। आप अपने बच्चों पे चीखें नहीं, आप गिबतें नहीं करें, आप बातें फजूल ना करें, खामोश रहें, और इसके लिए खामोशी ज़रूरी है। फिर आप देखिए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत है मेरी ज़िंदगी में, यानी ये एक चेक लिस्ट है जो मुझे, आपको, हम में से हर एक को आज मौका देती है कि आप घर जाकर बैठें और सोचें, मेरे से दीन का काम क्यों नहीं होता? मैं कोई काम शुरू करती हूँ पूरा क्यों नहीं होता? ये लोग मुझसे बदगुमान क्यों होते हैं? ये जो जिम्मेदारी लेती हूँ रास्ते में हर्डल्स क्यों आ जाती हैं? ये मेरे नफ्स को क्या हो गया है? ये सारी मजबूरियाँ क्या मेरे ही नसीब में? याद रखिए, जितने जुमले मैंने बोले हैं ना, ये सिर्फ बहाने बनते हैं, कब? जब अल्लाह आपको हटाना चाहता है। कभी वो मजबूरी होती है, कभी उज़र होता है, कभी बहाना होता है, कभी बीमारी, ये वल्ला ही अल्लाह की तरफ से होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इन 5-6 चीज़ों में कहीं कमी रह गई। अपनी ज़िंदगी को चेक कीजिए, कितनी खुशी से अल्लाह और उसके रसूल की बात मानती हूँ। फिर आप देखिए, वला तनाज़ो, तनाज़े, अल्लाह अकबर, तनाज़े कब आते हैं? जब मैं, आई एम, मेरा नाम। याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप को आई से वही पे नहीं ले आएंगी ना, अल्लाह ताला से दीन का काम नहीं लेगा। मैं, आप लफ्ज़ टीम लिख कर देखिए, TEAM, आई नहीं है इसमें। टीम बनती तब है जब अना छुटेगी। अपनी ईगो से निकलकर अपने आप को कम करके मुझे क्या कह दिया, कह लो। लोग कहते हैं मुझे मेरी सलाहियतों के मुताबिक नहीं दिया, मुझे दिया फिर किसी और को दे दिया, फिर मुझे हटा दिया। भाई क्या किया, कुछ भी ना करो, बस मेरा नाम लिखे रखो, तुम मुझे जूते सीधे करने पे लगा दो, मैं इधर लगा रहूँगा, क्योंकि मैंने दीन की इस गाड़ी में अपना हिस्सा डालना है। अब देखिए गाड़ी है ना, तो गाड़ी के अंदर इंजन भी है, उसके अंदर तो छोटे छोटे तार भी होते हैं, लाइटें भी होती हैं, सीटें भी होती हैं। चेक कर लीजिए, मैं कौन हूँ? मैं लाइट्स हूँ, मैं सीट्स हूँ, मैं कंफर्टेबल कर सकती हूँ किसी को, मैं स्टेयरिंग हूँ, मैं ब्रेक हूँ, मैं इंजन हूँ। बस अल्लाह मुझे दीन की गाड़ी में एक पुर्जा बनाकर डाल ले, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। देखिएगा फिर आपको अल्लाह कितनी बहारें देगा। मैंने देखा है कि वो लोग जो बाथरूम साफ़ कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला उनका भी मुकाम जो है वो इतना आला कर देता है कि अब वो औरत जो मस्जिद नबी की सफाई करती थी, अल्लाह के नबी सल्लम को जब पता चला कि उसकी वफ़ात हो गई और लोगों ने उसको दफन कर दिया, तो आपने कहा दल्लूनी अला कब्रेहा, मुझे उसकी कब्र दिखाओ किधर है। फिर आप वहाँ गए और आपने उसकी कब्र पर खड़े होकर उसके लिए दुआ की। आपने कहा मुझे क्यों नहीं बताया कि उसका जनाजा पढ़ाऊँ। याद रखिए शैतान बंदे को क्या कहता है, कहता है तेरे जैसा टैलेंटेड बंदा किन के हाथ पड़ गया, इनको तो कदर ही नहीं, ये बेकदर हैं। किसी खूब टैलेंटेड बंदे को लेकर आता है आपकी टीम में, जिसको पहले ही बहुत शौक है कि मैं तो हूँ ही दूसरों से बहुत आला, मेरे अंदर तो आना ही बहुत है। मैं आना नहीं कहता बंदा, वो कहता मैं आला हूँ, देखो मेरा पेन ओढ़ना, मेरा बात करना, मेरी इंग्लिश देखो, मेरी उर्दू देखो, ज़रा मेरे कपड़े तो देखो मैं कैसे पहनता हूँ। अब जूँ ही एक बंदा ऐसा आपके अंदर आ गया, फतफशलू, फिर वो आपको क्या कहेगा, बस मुझे नहीं समझते लोग। और यकीन करिए कि सहाबा को आप देखिए कि वो एक गुलदस्ता थे, छोटे फूल भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा गुलदस्तों में कांटे भी लगा देते हैं, कहीं पत्ते लगाते हैं, कभी डोरियाँ, कहीं कुछ, कि इस गुलदान को खूबसूरत करना है, इसको सजाना है। तो अगर आप और मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाएं, यानी मैं अपने लिए भी ये सच बात कहूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने आप को परखती हूँ, चंद दुआएँ अपने लिए मांगे, ऐ अल्लाह मेरा मिजाज मुजाहिदाना कर दे, ऐ अल्लाह मुझे सादगी दे दे, मुझे अपनी ज़ात से बेनियाज कर दे, ऐ मेरे मालिक तू मुझे ऐशकोश ना रख, मुझे सख्त जान बना दे, मैं हर बात से बेनियाज हो जाऊँ, लोग मेरी तारीफ़ करें तो मुझे बुरा लग जाए, और अल्लाह मुझे मेरी सलाहियतों के मुताबिक कहीं भी खपा दे, मेरी सुस्ती दूर कर दे, ऐ अल्लाह मेरी इखलाकी हालत को ठीक कर दे, मैं बहुत बोलती हूँ तो मेरी ज़ुबान पे चेक लगा दे, मैं बहुत सोती हूँ तो मेरी नींद कम कर दे, ऐ अल्लाह मैं बहुत ही खाती हूँ तो मेरे खाने पे काबू पा। आज रात अगर अकेले में जब मौका मिले अल्लाह के साथ बैठ जाए, आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपकी सारी चुन चुन के बुराइयाँ निकालेगा और आपको इस तरह से कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रह गई बात अल्लाह का दीन, सब बराबर। आप देखिए कि जो कंप्यूटर्स में काम करते हैं ना, उनको दो तीन टर्म समझ आएंगी। कुछ लोग कहते हैं हम बैक एंड पे काम करेंगे, कुछ कहते हैं हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। फ्रंट एंड क्या है, जो वेबसाइट आपको दिख रही है, बैक एंड क्या है, जो पीछे जोड़ तोड़ लगे। फ्रंट एंड तो छोड़ दीजिए, बैक एंड ही नहीं बनेगा तो फ्रंट पे कैसे आएंगे। कभी आप वेबसाइट डाउन लिखें और वो आधे डाउन है, क्या डाउन है, वो सब कुछ था, बैक एंड खराब हो गया। बात वाजे, यानी सामने पीछे बैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कहें कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी का अच्छा इस्तेमाल कर ले, और आखिर में कहकर आगे चलूँगी कि बैठे और सोचे, मैं भी सोचूँ, आप भी सोचें, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों जीत रही हूँ, मेरे गम क्या है, मेरी खुशियाँ क्या हैं। ऐ अल्लाह अगर आज मैं मर जाऊँ तो क्या होगा, किसको फ़र्क पड़ेगा मेरे जाने से। ऐ अल्लाह क्या मैंने अपने आगे जाने के लिए तैयार की हूँ, कुछ किया। यकीन करें अगर आप अल्लाह के लिए जी रही हैं ना, तो आप कहेंगे अल्लाह मुझे अभी नहीं मरना, मैं नहीं मरना चाहती, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, आऊँगी तेरे पास कुछ करके आऊँ। और अगर आप दुनिया के लिए जी रहे हैं ना, तो आपको अपनी मौत के साथ इतना खौफ तैयार होगा, इतना खौफ होगा कि आप खौफ ज़दा हो जाएंगे, नहीं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, नहीं अभी मेरे मियाँ को मेरी ज़रूरत है, अभी मेरे माँ बाप मेरा सदमा नहीं सह सकेंगे। तो आप इंशाल्लाह इन सारी बातों में अपने आप को सहाबा की नज़र से देखेंगे, और वो शेर है ना कि तू क्या सकवा में मगरिब पे ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम हाशमी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो सहाबा का किरदार था वो हमारे अंदर भी आ जाए। मुसलमान कभी रंग नस्ल पर नहीं जमा हुए, बिलाल काले स्याह थे लेकिन अबू बकर कुरैशी थे, लेकिन कितना प्यारा उनका ताल्लुक था। उम्मत बनाने वाली जो चीज़ है वो है आपस की मोहब्बत और इत्तेफाक, वसबिरू और दीन पे जमे रहो, दीन के रास्ते में जो मुश्किलात आए उस पे जम जाओ। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ऐसे लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं। वला तो अब ये क्या था करो, अब आगे क्या क्या ना करो उन चीज़ों में, एक चीज़ वला तकूनु कल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम बतरन वरिया अन्नास, और इन लोगों के सिरंग ढंग ना इख्तियार करो जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं। ज़रा ख्याल करो उस वक्त का जबकि शैतान ने इन लोगों के करतूत इनकी निगाहों में खुशनुमा कर दिखाइए और इनसे कहा था आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो उल्टे पाँव फिर गया और कहने लगा इन्नी बरी मिनकुम, मैं तुमसे बेजार हूँ और जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देखते, मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह ताला बड़ी सज़ा देने वाला है। यहाँ आप देखिए कि ये इब्लीस का वाक़या, जब मैदान बदर में जाना था किसी भी वजह से, जो वजह इस वक्त बयान करना ज़रूरी नहीं है, इब्लीस भी बदर के मैदान में गया और उसने काफिरों को यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ वहाँ लड़ूंगा, लेकिन जब फरिश्ते उतरे तो फरिश्तों को देकर शयातीन भागते हैं, तो उस सारे वाक्य का जिक्र है। लेकिन मैं जब भी इन आयात को पढ़ती हूँ ना तो मुझे उम्मते मुस्लिमा की शादियाँ याद आ जाती हैं। क्या आपको ये बदतर और दिखावा और रियाकारी किसी शादी का डिस्प्ले नहीं दिख रहा? आज अब देखिए उम्मते मुस्लिमा को जहाँ दूसरी मुश्किल पड़ गई ना, वहाँ एक मुश्किल क्या है कि आज हम डिस्प्ले कल्चर के शिकार हो गए। हर चीज़ को सजा दो, हर चीज़ के अंदर इस तरीके से दिखावा आ गया कि दुल्हन से लेकर गाड़ी से लेकर बिस्तर से लेकर चादर से लेकर सजावट ही सजावट। एक मुसलमान उम्मत जिनके सर पर इतने फितने हों, इतनी उनकी जान को मुश्किलात पड़ी हों, क्या उनको ये सूट करता? ये देखिए आपके सामने एक गाड़ी है, इतने फूलों वाली गाड़ी में बैठने वाली शादी, इसकी लड़ियाँ गिन लीजिए, क्या इतने साल भी कभी ये शादी कायम रहती है कि नहीं? आज जितना बतर जितना दिखावा, ये रिसेप्शन को देख लीजिए, क्या इसके अंदर गुजरने वाले जन्नत में से गुजरेंगे? क्या इन लोगों को यकीन है कि वाकई हम अल्लाह की नज़रों में भी इतने बड़े हैं जितने आज हम लड़की वालों की नज़रों में बन रहे हैं? ये सिटिंग एरिया को देख लीजिए, क्या ये जन्नत का मुकाबला कि इन द मलिक के मुक्तदर? आज उम्मत मुस्लिमा अपनी खुशियों के मौके पे पैसे को पानी की तरह उजाड़ती है, लेकिन आज पूरे पारे में आपको बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास होगा कि अल्लाह मेरे पास अगर एक पैनी और पैसा भी है ना तो मेरा वो अपने रास्ते में लगा ले, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र ऐसे किसी ने नहीं सजानी। लफ्ज़ बरात जिसका कोई तसव्वुर नहीं है, आज आप देखिए कैसे घन गरज के साथ लोग सच सच के जाते हैं, लड़की भी ले आते हैं, उनके घर का सामान भी लूट के ले आते हैं। और आप ये देख लीजिए मैचिंग को देख लीजिए, ये सिटिंग देख लीजिए, डाइनिंग को देख लीजिए, खानों को देख लें, कपड़ों को देख लें, जूतियों को देखें, और अल्लाह कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम बतरा। क्या आज हम बतर प्रस्त नहीं हो गए? हम दिखावा प्रस्त नहीं हो गए? वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कैसे होता है ये? एक शादी आती है, अच्छी खासी बहनें क्लासेस से छुट्टियां शुरू करती हैं, शादी की तैयारियां कर रही हैं। कभी आपने सोचा पिछले 6 माह से आप बेटी की शादी की तैयारी कर रही हैं? क्यों भाई, क्या सिखाया आपने बेटी को? और दूसरी तरफ जो इखलाक और किरदार आना चाहिए बच्चियों में वो कोई नहीं। आप कहते हैं 6 माह पहले से बेटी की तैयारी कर रही हूँ शादी की, क्या कि उसको अच्छी बहू बनना सिखा रही हूँ, अच्छी बीवी बनना सिखा रही हूँ, उसकी ज़ुबान छोटी हो जाए, ज़रा ये करूँ तो बात भी बने। हम कपड़े जोड़े जूते लीते इस तरह की चीज़ें बना बना के अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, दूसरों का। किसी ने पहनना है कि नहीं पहनना आपको नहीं पता, लेकिन आपने बनाना ज़रूर है क्योंकि वरना लोग बातें करेंगे कि बहू को जोड़े ही नहीं दिए। तो याद रखिए कि जब तक हमारी सोसाइटी से ये बतर नहीं निकलेगा, दिखावा और डिस्प्ले नहीं निकलेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। किसी एक शादी के बाद आपको कभी आसमान से ये खबर नहीं आएगी अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, अल्लाह ने तुमको चुन लिया। आज मैं और आप अल्लाह के दीन को पीछे डालकर जब इस किस्म के काम करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी फिर बेकार चीज़ों में पड़ती है। आज बाज़ारों की रौनक क्यों है, कभी आपने सोचा? आज पार्लर्स में इतनी बेहयाई क्यों है? आज आप देखिए फैशन के नाम पे औरत डिस्प्ले क्यों बन गई? बतरन्नास, दिखावा कल्चर। अल्लाह ताला मुझे आपको इससे महफूज रखे रखे और फिर अल्लाह ताला हम सबको ये बताते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन से अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक चलाओ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी वाक्य को बुनियाद बनाकर, असल में तो आप देखिए जंगें होती हैं लोगों की इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए, और अगर लोग अपनी तरबियत नहीं करेंगे तो फिर उनके दिलों में जो मरस पैदा होता है उसको निफाक कहते हैं। यहाँ से आगे आप पूरी सूरत बल्कि सूरत तौबा में तो बहुत ही ज़्यादा कसरत से निफाक का जिक्र होगा। तो यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि जंगों का जो मकसद होता है, एक तो ये होता है ना कि दुश्मन मغلوب हो जाए, इस्लाम गालिब हो जाए, वहाँ लोगों की क्लासिफिकेशन भी होती है, चुनाव, इनको निकाल के फेंको, दूसरों को लेकर आओ, ये खुद निकल जाएंगे, इनको पीछे कर दो, ये आगे आ जाएंगे, यानी वो जैसे अपसाइड डाउन होने वाली कैफियत है ना, तो मुनाफिक आम हालात में छुपा रहता है, क्योंकि मस्जिदों में जाके नमाज तक पढ़ते थे। कैन यू बिलीव कि अल्लाह के नबी के दौर के मुनाफिक मस्जिद में कम से कम एक नमाज ज़रूर पढ़ने जाते थे, चाहे नीयत ये होती थी कि ज़रा आज इनकी सरगर्मियाँ तो देखें कर क्या रहे हैं, लेकिन जाते ज़रूर थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम मस्जिद में नहीं जाएंगे तो हम मशहूर हो जाएंगे कि हमने निफाक का ऐलान कर दिया। तो अब यहाँ से ज़रा सुनते जाइए और दुआ करें, बहुत यकीन करें ये सूरत बड़ी बोझल है, और ये दोनों सूरतें जो इंसान को एक आईने की तरह अपना आप देखने पर मायल करती हैं।